बार हम सबने दयानंद जयंती और शिवरात्रि के बारे में चर्चा की थी। अगेन कम बैक टू द ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का आज का मंत्र 15वां मंत्र है, 15th मंत्र है। मेरे साथ मिलकर बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपावृणु पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। वैसे तो ईशोपनिषद के हर मंत्र अपने आप में यूनिक है, बड़ा एक्सक्लूसिव है, और बहुत सारी चीजें ऐसी बातें हैं जो बहुत डेयरिंग है, जो आजकल की विचारों में देखने को सुनने को नहीं मिलता। हम बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होते जा रहे हैं, ट्रूथ से दूर और पॉलिटिकली सही दिखने की कोशिश में। ईशोपनिषद इससे इवन बाकी शास्त्रों से भी अलग है, काफी बोल्ड चीजें वो बातें करता है। ये मंत्र भी उन्हीं में से एक है। ये कहता है कि सत्य का जो मुख है, जो फेस ऑफ ट्रूथ, इज कवर्ड बाय ए हिरण्मय पात्र। हिरण्मय मीन्स गोल्डन, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्डन वेसल से सत्य का मुंह कवर रहता है। इसीलिए हे पूषण, समाज को, संसार को रास्ता बताने वाले, लाइट देने वाले जो ज्ञानी विद्वान, जो भी लीडर हैं, प्लीज तत्त्वम अपावृणु, उस कवर को, गोल्डन कवर को हटाओ, उस अट्रैक्टिव जो कवर को, स्क्रीन को हटाओ। किसके लिए? ना, जो लोग सत्य धर्म है, जिनके लिए सत्य ही सब कुछ है, ट्रूथ ट्रूथ सीकर्स, ऐसे लोगों के लिए आप उस गोल्डन कवर को हटाओ। देवियों, सज्जनों, जनरली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो सच है वो अंधेरे से ढकता है या इग्नोरेंस से ढकता है। मान लीजिए आपके रूम में कोई चीज रखा हुआ हो और अंधेरा हो, तो चीज का होना ट्रुथ है पर आपको नहीं मिलता, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डार्कनेस। ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पर मंत्र उससे दूसरी बात कहता है जिसको जनरली हम इग्नोर करते हैं, कि लाइट भी कभी कभी ट्रूथ के लिए कवरिंग होता है, ट्रूथ को आने नहीं देता है। वो जो लाइट की जो ब्रिलियंस है, उसका जो अट्रैक्शन है, वो जो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, तो भी हमें चीजें दिखता नहीं है। तो दुनिया में सिर्फ अंधेरे से हम ब्लाइंड नहीं होते हैं। ब्लाइंड मतलब देख नहीं सकते, मेंटली ब्लाइंड का मतलब हम समझ नहीं सकते। हम लाइट से भी ब्लाइंड होते हैं और ज्ञान से भी मूर्ख बन जाते हैं, ब्लाइंड, मेंटली ब्लाइंड बन जाते हैं। क्योंकि जो लाइट का जो अट्रैक्शन है, यहां इसका भाव है, जो गोल्डन वेसल कहता है, इसका सिंपल मीनिंग है, जिसमें चमक हो, ब्रिलियंस हो, जिसमें अट्रैक्शन हो, वो चीजों को देखने में जो जैसा है उसको जानने या समझने में हमें ढक देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो पावरफुल व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा, वो जो बोलता है लोग उसको सच मानते हैं, और जब पावरफुल होता है उसका ट्रूथ अपना होता है। मान लीजिए यूएसए में एक डिबेट रहता है, और वो बड़ा पॉलिटिकली डिवाइडेड डिबेट है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है कि नहीं होता है, ये क्लाइमेट चेंज ट्रूथ है या नहीं है। अब एक पूरा का पूरा पार्टी है और उसके फॉलोअर्स हैं, उनमें साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इग्नोरेंट लोग हैं, जो मानते हैं देयर इज नथिंग लाइक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। एक पूरा और ग्रुप है जो मानता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को मानना समझ में आता है, पर जब साइंटिस्ट भी उनके साथ हां में हां मिलाए, देयर इज नथिंग लाइक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, मतलब ट्रूथ के साथ हम कंप्रोमाइज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द गोल्डन वेसल, दैट मनी, दैट पावर, वो हमें मजबूर कर देता है सच को देखने के लिए या सच को समझने के लिए। तो हमारी लाइफ में ऐसे डे टू डे लाइफ से लेकर के सोशल पॉलिटिकल लाइफ में, ग्लोबल वर्ल्ड में भी ऐसे लाखों हजारों चीज हमारे आसपास घटता है जो सच है, हम जानकर भी उसको मानना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस सच से ऊपर जो कवर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो हम कंप्रोमाइज करने को तैयार बैठते हैं। अरे हमेशा से होता है, जिसके पास धन है, पावर है, किसी भी तरह से वो सोसाइटी में हायर लेवल पर है, वो ट्रूथ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। एवरी सिंगल पर्सन डूइंग इट, जो सोसाइटी में जैसा ट्रूथ है वो अलग है, जो कॉमन ट्रूथ है वो अलग है। पावरफुल व्यक्ति की अपनी अंडरस्टैंडिंग ही सच है, बाकी सब झूठ है। संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है ऐसे लोगों के लिए सटायर करके, कहते यस्यास्ति वित्तम सनर कुलीनः सपंडित स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुण कांचनमाश्रयन्ति। एक सैटायरिक श्लोक है, वो कहता है ही हु हैज वेल्थ, अब वेल्थ में सब कुछ आता है, आपके पास पावर है, पॉलिटिक्स है, किसी पोस्ट पर हैं जहां आप डिसीशन लेते हैं, वेल्थ है, जिसके पास है ही इज कंसिडर्ड टू बी द फॉर्म ऑफ ए नोबल फैमिली, वो कैसा भी फैमिली से आए अगर बहुत पैसा वाला बहुत पावरफुल है, जी आप सबसे अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप ही सबसे ज्यादा फेमस हैं, सारे अच्छे गुण आप में ही है, सारा ज्ञान आप में ही है, आप सबसे ज्यादा सुंदर हैं, आप ही दुनिया में इकलौते हैं, क्योंकि सारा गुण कांचन सोने पर ही टिका होता है। जिसके पास सोना है, सोना समझते हैं गोल्ड, गोल्ड रिप्रेजेंट्स द वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सोसाइटी का रूल है, नेचर है, ये नेचर का भी नेचर है, ये ह्यूमन बींग का नेचर है। और हम ऐसा मानते भी हैं कि जो बड़ा आदमी है, किसी भी तरह से बड़ा हो गया, जो वो बोले वही ठीक है। तो जब यूरोप में 14th, 15th, 16th century में जब राजाओं से ज्यादा पावरफुल प्रिस्ट होते थे, पोप होते थे, तो उस समय वहां साइंस डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि राजाओं के लिए सच वो है जो उनके प्रिस्ट या पोप कहे। तो आप कितना भी ट्रूथ सीकर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च करते हो, आपने कोई बात रखी, अगर वो पोप के विचार के खिलाफ है तो यू हैव टू बी पनिश्ड, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि यू आर रॉन्ग। तो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, विचारक, फिलोसोफर को फांसी मिली, जेल में गए, सजाएं मिली, जिनमें से एक दो को हम जानते हैं, वो कोपरनिकस हो, वो गैलीलियो हो, एक्सेट्रा। क्योंकि सत्य हमेशा पावर के पीछे छुप जाता है, पावर या पोस्ट या जो जो गोल्डन जो पावर है उसके पीछे हमेशा छुप जाता है, क्योंकि उसका अपना अट्रैक्शन है। जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, वो धूप बिल्कुल आपके आंखों के ऊपर पड़ता है तो आपको कुछ नहीं दिखता है, बिल्कुल अंधेरे में। तो देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, इग्नोरेंस में भी, डार्कनेस में भी आप कुछ देख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद धीरे 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 आपकी आंखें हैबिचुअल हो जाता है, चीजों को थोड़ी थोड़े आप नोटिस करने लगते हैं। पर जब आंखें आपके चौंधिया जाते हैं रोशनी से, प्रकाश से, तो आप कभी कुछ नहीं देख सकते हैं। इसी तरह जो पावर में, वेल्थ में, प्रॉपर्टी में, जो इन चीजों में जो चौंधिया जाते हैं, जिनके मन में ये हावी हो जाता है, फिर वो सच को बड़े मुश्किल से देख पाते हैं। और उनके फॉलोअर या उनके नीचे रहने वाले लोग मजबूर होते हैं उन्हीं चीजों को मानने करने के लिए जो उनका हेड या जो उनका ऊपर वाला जो उनको आदेश करता है। बड़ा सुंदर माइथोलॉजिकल स्टोरी आप जानते हैं, अभी होली आ रही है, बहुत सारे लोग होली में वो कहानी सुनाते हैं, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी। मजेदार बात देखिए, जो राक्षस है उसका नाम है हिरण्यकश्यप, उसका भाई भी हिरण्याक्ष। मतलब हिरण्यकश्यप, हिरण्य अभी आपने सुना, हिरण्य का मतलब होता है सोना, गोल्ड, कश्यप चमक, जो सोने के चमक, यहां सोने का चमक का मतलब होता है वही वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी की चमक में खोया हुआ व्यक्ति। वो इतना ज्यादा खोया हुआ व्यक्ति, उसको सच नहीं दिखता, उसको ना ईश्वर दिखता है, ना न्याय दिखता है, ना व्यवस्था दिखती है, ना सच दिखता है, कुछ नहीं दिखता। वो अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, कोई दूसरा भगवान नहीं, पूजना है तो मुझे पूजो। देवियों सज्जनों, इस कहानी को सिर्फ पुराण की माइथोलॉजिकल कहानी मत समझें। आज भी हमारे आसपास हजारों लाखों लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते, अपने आप को प्रो सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान बना देते हैं। नहीं डिक्लेयर करते हैं तो भी वो अपने आप को अंदर से भगवान से कम नहीं मानते हैं। वो हिरण्यकश्यप नेचर है, वो हमारे नेचर, हम तो उनको बड़े भारे बड़े आदमी समझते हैं, पर रियलिटी में वो हिरण्यकश्यप हैं, राक्षस हैं। और उसका एक बेटा है प्रहलाद, उसके नाम में बड़ा, ये सब जो नाम होते हैं पौराणिक स्टोरीज में, वो नाम के पीछे मैसेज होता है। प्रहलाद का मतलब प्रकर्षेणा, बिल्कुल अच्छी तरह जो लाद हो, खुशी हो, मस्त हो, मजे में हो। और वो प्रहलाद कौन है, उसको हर जगह सोने में भी सोना नहीं दिखता है, वो सोने में भी उसको अपना सच दिखता है, वो कण कण में वो ईश्वर को देखता है, खुद में भी, शत्रु में भी, दुश्मन में भी, पहाड़ में भी, पानी में भी, हवा में भी, सब जगह उसको ईश्वर दिखता है, आत्मा दिखती है, परमात्मा दिखता है। इसीलिए वो प्रहलाद है, प्रसन्न है, शांत है, कोई हलचल नहीं है, शांत है। और ठीक उल्टा उसका पापा है, पिता है, उसको हर चीज में सोना दिखता है, ईश्वर भी खड़ा हो जाए उसको भी वो बेचने को तैयार रहता है, उसको भी सबोर्डिनेट करने को तैयार होता है। इसीलिए हमेशा गुस्से में है, हमेशा अशांत है, हमेशा परेशान है। तो जब आप सोने के चकाचौंध में घिर जाते हैं तो फिर हम हिरण्यकश्यप बन जाते हैं। सोने का यहां गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं, गोल्ड रिप्रेजेंट ऑल दोज शाइनिंग थिंग्स, जो चमकीला, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो प्रिय हैं, जो कठोपनिषद जिसको प्रेय कहता है, जो अच्छा लगता है, वो धन हो, दौलत हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, लोक हो, फॉलोअर्स हो, पावर हो, जो कुछ भी, जो भी अट्रैक्टिव है, जिससे हमें सोसाइटी में एक स्थान देता है, जो हमारे मन को हर लेता है, वो सब गोल्डन होते हैं। इसी तरह हम शरीर की चकाचौंध में आत्मा को कब से भूल चुके होते हैं, शरीर की सुंदरता में, शरीर में एंजॉय करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, जो मर्जी देख सकते हैं, सूख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इन चीजों में एंजॉय करने लगते हैं तो हम अपने आत्मा को भूल गए होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे त्योहार में, आजकल भारत में त्योहार देखेंगे, जो फेस्टिवल्स होते हैं, शादी विवाह में भी आप देखेंगे त्योहार होता है, फेस्टिवल्स हुआ करते थे ज्यादातर, जिसमें लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, शरीर को मन को शुद्ध करें, प्यूरिफाई करने के लिए। ये एक ऑकेजन होता है जिसका हम यूज करते थे कि साल में कुछ समय ऐसे निकालें, कुछ घंटे, कुछ दिन, रात, जो भी समय है, अपने मन को प्यूरिफाई करें, उपवास, ईश्वर के क्लोज होने की कोशिश करें, दुनियादारी से दूर रहें, खान पान की चक्करों से दूर रहें, बस मन और शरीर को पवित्र रखें, ईश्वर की भक्ति में, जप में, तप में अपने आप को डूबे के रखें ईश्वर से क्लोज होने की। अब फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्मी गानों के फिल्मी गाने चलते हैं चारों तरफ, बड़े बड़े फेस्टिवल्स आप देखते हैं, वहां ना कोई भजन है, ना जप है, ना तप है, ना उपवास है, उसमें खाने पीने की इतना धूम मचा रहता है, उतने ज्यादा गानों की, नाचने की इतनी धूम मचा रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे त्योहार जो होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत सारे त्योहार हैं जो नाचने गाने और खाने पीने के लिए हैं, वो भी हमें एंजॉय करना चाहिए। पर हमने तो पूरे साल हर फेस्टिवल को, हर स्पिरिचुअल चीजों को, हर रिलीजियस चीजों को नाचने गाने और खाने के अलावा कुछ बना के नहीं रखा, क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, वो हमें आसानी से कैच कर लेते हैं, हमारा माइंड आसानी से वहां चला जाता है और सच अंदर छुपता चला जाता है, छुपता चला जाता है। क्यों ज्यादातर दुनिया में आज ईश्वर से ज्यादा पूजे जाते हैं वो लोग जो अपने आप को ईश्वर के या तो प्रोफेट कहलाते हैं या मैसेंजर कहलाते हैं या गुरु कहलाते हैं या साधु सन्यासी बाबा कहलाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं? मेरे ख्याल से आम आदमी को पता है कि ईश्वर वो जिसने संसार को बनाया, जो संसार को पालता है, केयर करता है, बनाता है, हम सबका क्रिएटर है, सस्टेनर है, जिसने चांद बनाया, सूरज बनाया, प्लैनेट्स बनाया, पेड़ पौधा, हवा, पानी, हमें बनाया, हमारे शरीर बनाया, वो ईश्वर है। जिस इंडिविजुअल ह्यूमन बींग को हम पूजते हैं वो कोई अच्छा ज्ञानी रहा, समाज सेवक रहा, जो भी रहा हो, क्यों पूछते हैं उसको? हम जानते हैं कि यह ईश्वर नहीं है, उसके बावजूद भी आधी दुनिया ऐसे इंसानों को पूछती है, क्यों? सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फिशनेस है, फायदा चाहिए। हो सकता है कि यह इंसान है, ये हमारा क्लोज है, हमारे बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा, हमारे दुखों को दूर करने में मदद करेगा। इसीलिए सारे रिलीजियस फील्ड में आपको यही बोला जाता है, अगर आपको अमुक मंदिर में जाओ, अमुक मनोकामना करो, वो पुआ आपका भर जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है तो इस मंदिर में जाओ, अमुक जगह जाओ, वो बच्चा हो जाएगा, आपकी बीमारी हो, बीमार हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अमुक जगह जाओ, ठीक हो जाएगा। तो हम ईश्वर के साथ नाता जोड़ते हैं अपनी फायदा उठाने के लिए, वही गोल्डन अट्रैक्शन के कारण, जहां हमें कुछ फायदा मिले। एक तो पूरा का पूरा रिलीजन है जिसका काम यही बताना है कि कैसे उनके प्रोफेट ने मिरेकल किया और आप इसीलिए वहां ज्वाइन करो, क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है, आपकी बीमारियों को वो दूर कर देगा, आपके दुखों को वो दूर कर देगा, पूरा का पूरा रिलीजन इसी पर बेस्ड है। और हम साइड बाय साइड ईश्वर को छोड़ते गए, भगवान को छोड़ते जा रहे हैं और इंसानों को पूछते जा रहे हैं, क्यों? अगेन अट्रैक्शन है, सच छुप जाता है, ईश्वर की सच्चाई छुप जाती है, वो इंसानी भगवानों के पीछे, क्योंकि इंसानी भगवान दावा करते हैं कि हम आपके दुख दर्द वगैरह वगैरह को दूर करने कर लेंगे, वो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, पर हम धीरे धीरे, ओवरऑल ह्यूमन बींग धीरे धीरे सच से दूर भागता है, क्योंकि वही अगेन वो हिरणमये न पात्रेण, सोने का जो आकर्षण है, जो सांसारिक सुख दुख छूटने के जो आकर्षण है, वो हमें मजबूर करता है उस तरह जाने के लिए। जनरली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सत्य को या ज्ञान को अंधेरे से ढका जाता है, लालच से, दूसरे चीजों से ढका जाता है, मंत्र कहता है नहीं, जो जितने चमकीले चीजें होते हैं वो ज्यादा ढकते हैं, ज्यादा रोशनी से, जैसे अंधेरा ना होने पर भी हमें नहीं दिखता, क्योंकि हम इस दुनिया के अट्रैक्शन से इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली, तो हमें सच होने पर भी दिखता नहीं, धीरे 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 हम उस सच को झूठ मानने लग जाते हैं। पर जैसे ही थोड़ा आप डीपर अंडरस्टैंडिंग रखने लगते हैं, जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डीप होने लगता है, अपने सेल्फ को रियलाइज करने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। सेल्फ रियलाइज करना तो शायद मुश्किल है, पर सेल्फ एनालाइज करना मुश्किल नहीं है। तो दोज हु एनालाइज देम सेल्फ दे इजीली कैन गो डीपर देन अदर्स, और वो जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो हमें इतना तो गाइड कर सकता है कि हर चमकीला चीज फायदे का नहीं होता है, कुछ बिना चमके वाले चीजें भी फायदे के हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, हमारे लाइफ में जो सबसे मुश्किल बात होती है कि हम बुरी चीजों को छोड़ना तो आसान होता है हमारे लिए, मतलब ऐसे कोई आसान नहीं है, पर हम मानते हैं कि जो बुरी चीजें हैं, जो बैड है, उसको आसानी से छोड़ा जा सकता है। आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई खराब व्यक्ति है तो आप इसको छोड़ देते हैं, उसे संपर्क रखना बंद कर देते हैं। पर मुश्किल होता है तब जब अच्छी चीजों को छोड़ना पड़े। पर प्रॉब्लम क्या है कि अच्छी चीजों को, चमकीले चीजों को हम बुरा कह ही नहीं सकते। चेन्स तो आपको बांधने के लिए होता है, चेन जो कड़ियां होती हैं, वो स्टील का हो, तांबे का हो, कॉपर का हो, गोल्डन हो, किसी का भी हो, अगर कोई लोहे की चेन से हमारे हाथ को, शरीर को बांधता है, हमें बड़ा दुख होता है, हम उसे छूटने की कोशिश करते हैं, हर कोशिश करते हैं कि हम उस जो स्टील से बना हुआ चेन से हम बंधे हुए हैं उसे छूट जाएं। पर प्रॉब्लम कहां होता है, अगर किसी ने हमें गोल्डन चेन से बांध दिया हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ द गोल्डन चेन। क्यों? क्योंकि हमारा मन मानता ही नहीं कि ये चेन है, हमें तो लगता है ये ऑर्नामेंट है, क्योंकि गोल्ड का है। वो जो अट्रैक्शन है गोल्ड का, वो हमें मजबूर करता है कि मैं बंधा रहूं, मैं एंजॉय करने लगता हूं। इसलिए नहीं कि बांधने में, बंधा हुआ होने से हमें अच्छा लगता है, नहीं, वो गोल्ड का अट्रैक्शन हमें ये मानने के लिए मजबूर करता है ये चेन नहीं हो सकता, ये तो ऑर्नामेंट है, आभूषण है। पर जैसे ही उसके जगह आप झूठ का ले आते हैं, धागे का ले आते हैं या लोहे का ले आते हैं, तो आप रिएक्ट करने लगते हैं। इसीलिए जो खराब हमारे लिए, जो इंफीरियर हैं, जो खराब हैं, उनको छोड़ना तो आसान है, पर जो हमारे लिए अच्छा है, चमकीला है, अट्रैक्टिव है, प्रेय है, उससे छुटकारा पाना सबसे मुश्किल काम होता है। इसीलिए शत्रुओं से तो आप लड़ सकते हो, आप किसी जगह जाते हो, आपका पैसा किसी ने ले लिया, आपके साथ किसी ने खराब बिहेव किया, आप रिएक्ट करते हो, लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, जो भी जैसे भी आपकी तरीका है आप करते हो। पर वो व्यक्ति जो आपका क्लोज हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आप उससे कैसे लड़ोगे, कितना भी बुरा हो। शत्रु से लड़ना देवियों सज्जनों आसान होता है, पर मित्रों से लड़ना आसान नहीं है। प्रॉब्लम हमें शत्रुओं में तो दिखता है जो बहुत दूर है, जो हमें मुश्किल से हमें कभी रेयरली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करें, मोस्ट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय आवर ओन पीपल। पर उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि वी एंजॉय देयर कंपनी। इसीलिए दुख से लड़ना आसान है, करेला कड़वा है, छोड़ना आसान है। नीम कड़वा है, छोड़ना आसान है, पर रसगुल्ला कैसे छोड़ूं? बहुत डिफिकल्ट है। लड्डू कैसे छोड़ूं? बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अच्छा लगता है। अच्छा लगने से छुटकारा पाना दुनिया में अगर कोई सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए, हमारे लाइफ में, वो है जो हमें अच्छा लगता है उसे छुटकारा पाए। पर मजेदार बात है, हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम का जड़ उन्हीं चीजों में है, उन्हीं लोगों में है जिनको हम पसंद करते हैं, जिनके साथ हम अटैच्ड हैं। आप गरीबी से लड़ सकते हैं, क्योंकि गरीबी से आपको दुख हुआ। आप गरीबी से लड़ेंगे, गरीबी को हटाएंगे। अगर अमीरी के कारण आपको दुख हो रहा है, क्या अमीरी छोड़ सकते हैं? मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं लोग नहीं छोड़ते हैं। बुद्ध तो राजपाट छोड़ के भाग गया, महावीर छोड़ के भाग गए, हजारों लाखों ऋषि मुनि हैं जो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े धनी ज्ञानी मानी घर छोड़ के भाग गए। पर क्या कमन लोगों के लिए यह आसान है कि अमीरी को छोड़ के भागा जाए अगर अमीरी दुख देने लगे? नहीं। हम तो अपने घर के अगर तलाशी लें सबके घर की, तो अपने क्लोजेट में या गराज में जितने यूज करने वाले चीजें आपके घर में हैं, पूरे घर में, उससे 10 गुना ज्यादा वो चीजें पड़े हुए हैं जो आप यूज नहीं करते, पर क्या करें, फेंक भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते। घर की जगह कम होता जा रहा है, पर और हमारी होर्डिंग बढ़ती जा रही है, यूज कम है। अमीरी तो छोड़िए, त्रास भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात महर्षि पतंजलि योग दर्शन में करते हैं। योग दर्शन में उन्होंने 4 चैप्टर लिखा, महर्षि पतंजलि जो योग के बारे में बात करते हैं, उसमें एक चैप्टर पूरा, जो थर्ड चैप्टर है, उसे कहते हैं विभूतिपाद। विभूतिपाद का मतलब जिसमें एक योग के सर्टन स्टेज पर आप पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे सुपर नेचुरल, सुपर सेंसुअल एबिलिटीज आ जाती है। आप हवा में भी हल्का, इतना हल्का बन जाएंगे रुई की तरह आप चल सकते हैं। आप मुंह से, आपकी मुंह से कोई बात निकली वो सच होकर रहता है। हजारों चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया, वैसे कोई रैंडमली नहीं, उसकी बैकग्राउंड, उसकी रीजनिंग, उसकी प्रोसेस सब डिटेल में समझाया है कैसे ये काम करता है। विभूति का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, एक सुपर नेचुरल पावर एबिलिटी योगी के अंदर आता है। पर लास्ट में वो बार बार वार्निंग देते हैं कि ये सब चीजें योगी के लिए ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं। योगी अगर गलती से भी इन चीजों को एंजॉय करने लगा तो वो अगेन विल गो बैक टू द नॉर्मल पर्सन। जैसे वो जो चूहा बनते बनते शेर बन गया, चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से वो फिर शेर बन गया। पर अगर आप शेर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगेन विल कम बैक टू द सेम चूहा। वो वार्निंग करते हैं, ये जो विभूति है, ये जो आपकी सुपर नेचुरल पावर है, ये लोगों के लिए तो मजेदार है, अट्रैक्शन है, वो तो आपको भगवान बना के पूजेंगे, पर ध्यान रखो ये तुम्हारे नुकसान के कारण है, इनसे बच के रहना। क्यों? वो उसके कारण बताते हैं और बड़े एलाबोरेटली बताते हैं। जैसे ही लोगों किसी को पता चलेगा तुम्हारे पास ये गुण है, लोग तुम्हें पूजने लगेंगे, बड़ी बड़ी सभा में बुलाने लगेंगे, तुम्हारे आदर सत्कार करेंगे लगेंगे, तुम्हारा रेस्पेक्ट करने लगेंगे, तुम्हारा यश कीर्ति बढ़ने लगेगा, और धीरे 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 तुम उस ट्रैप में फंसते जाओगे एंड अगेन विल एंजॉय ऑल द मुंडेन थिंग्स, मेटेरियल थिंग्स, और तुमने जो 20-25-30 साल लगा के अपने आप को इतना प्यूरिफाई किया था, वो सब धरे के धरा रह जाएगा, अगेन यू विल कम बैक टू द सेम पोजिशन। बहुत डेंजरियस है, यू वार्निंग देते हैं। देवियों सज्जनों, अंधेरे से लड़ना आसान है पर प्रकाश से लड़ना मुश्किल होता है। समटाइम इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। राम और सीता जैसे समझदार लोग भी उस गोल्डन हिरण के पीछे फंस गए, जो सोने का हिरण और बर्बादी का कारण बनता है। ये जो हमारी सोने की आशा है, सोने की आशा, ज्यादा कमाने की, नाम की, यश की, धन की, संपत्ति की जो जो डिजायर है, वही हमें खींचता है अंधा बनाने के लिए, ब्लाइंड बनाने के लिए। और वहीं से स्टार्ट होता है सुपरस्टिशियंस, अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या है? मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है जो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, और मैं डॉक्टर के पास जाऊं वो कहता है नहीं हो सकता, किसी समझदार जो जो कोई अंडरस्टैंडिंग रखता हो उसके पास जाऊं, मैच्योर पर्सन के पास, वो कहेगा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उन लोगों के पास जाना शुरू किया कि कोई बात नहीं, हमारे यहां होगा, क्या करना, कुछ नहीं, अंगूठी बदल दो, अंगूठी में पत्थर बदल दो, हो जाएगा, जो काम नहीं हो रहा है वो हो जाएगा, घर का दिशा बदल दो, दरवाजा इधर रखे हो, इसको तोड़ के इधर कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा, आसान है क्या, 100-200-500 हजार रुपए की खर्च है, डॉलर की खर्च है, काम बन जाएगा। यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास की, सुपरस्टिशियन के, ये गोल्डन डियर के पीछे भागने के कारण। सुपरस्टिशियन और कुछ नहीं, उन लोगों की, वो वीक माइंडेड लोगों की जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है उसको फील करने के लिए जो वो शॉर्टकट रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, उसको कैश करने वाले कुछ बुरे लोग अपने ढंग से उसको कैश करते हैं। वो कैश रिलीजियस सुपरस्टिशियन हो, वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, वो आपकी वास्तु हो, देर आर थाउजेंड टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस आर देयर टू कैश आवर दैट टाइप ऑफ ब्लाइंड फोल्डेड इमोशंस। इसलिए मंत्र कहता है तत्त्वम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम् मुखम्। हम इसको ऐसे समझे, लाइफ इसके कारण कैसे प्रॉब्लमेटिक होता है जब हम सुपरफिशियल चीजों में भागते हैं, जब हम अट्रैक्टिव चीजों की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। देखिए, सोसाइटी में सबसे ज्यादा फेमस नाम किसका है, सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके होते हैं? कोई साइंटिस्ट का नाम लेंगे जिसका कोई फॉलोअर है, कोई फिलोसोफर का नाम लेंगे जिसके कोई फॉलोअर है, पर किसी फिल्म हीरो या फिल्म एक्ट्रेस का नाम लीजिए, वो करोड़ों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में फॉलोअर्स मिलेंगे। किसी गाने गाने वाले का, डांस करने वाले का नाम लीजिए, करोड़ों में फॉलोअर्स मिलेंगे। किसी पॉलिटिकल लीडर का लीजिए तो करोड़ों में फॉलोअर मिलेंगे, पर वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव हैं, लेस अट्रैक्टिव देन दोज हु आर वर्किंग इन सिल्वर स्क्रीन। ये जो सुपरफिशियल अट्रैक्शन हमारा है, उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होना जो डेकोरेटिव है, जो मोस्टली ऑर्नामेंटिव है, हम उसमें जकड़े होने के बावजूद भी, दुख पाने के बावजूद भी हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय करने की प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट कल्टीवेट करते हैं कि इससे मैं एंजॉय कर सकूं। हम ज्यादातर सुख ढूंढने के लिए जो अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं पैसे में, नाम, नाम समझते हैं, नेम, फेम, यश, कीर्ति वगैरह वगैरह में, और बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं सुख के रियल कॉज में, नोइंग सेल्फ, क्लैरिफ purifying our own mind, making our mind little bit balanced. Sukh aur dukh mind ke mind se related hota hai, दुनिया की चीजों से नहीं। अगर होता तो गरीब आदमी सबसे दुखी होते, अनपढ़ आदमी सबसे ज्यादा दुखी होते, ऐसा नहीं होता है। पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी दोनों ही दुखी मिलते हैं। बहुत पैसे वाले बहुत गरीब भी दुखी और सुखी दोनों मिलते हैं। बहुत पावरफुल और पावरलेस आदमी भी दोनों ही सुखी और दुखी मिलते हैं। इसका मतलब सुख और दुख सिर्फ चीजों को होल्ड करने में, अक्वायर करने में, पावर पोस्ट वेल्थ करने में नहीं होता है। उनका डेफिनेटली उनका एक सर्टन यूज है, एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, वो स्वाभाविक है। पर जब हम उन्हीं के पीछे पड़ते तो होता क्या है, फिर अंदर से हम खोखला होते जाते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ज्यादातर ऊंचे पोस्ट पर पहुंचने वाले लोग, खास करके जो अंदर से बिल्कुल खाली हैं, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल लोग, वो उनके पास कितना भी धन हो, नाम हो, फेम हो, पावर हो, अगर अंदर से वो खोखला है, वो सब मोस्ट ऑफ टाइम देयर लाइफ डिप्रेशन में गुजरता है। उनको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करना पड़ता है। वो तो वैसे ही है, नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कोई सैनिक है और कोई सैनिक को लड़ाई के लिए जाता है तो उसको किसी ने गिफ्ट दिया। ये यूएसए की घटना है। तो ये कॉस्टम होता है जो ग्रेटफुल स्टेट्स या नेशंस होते हैं, तो जो जीता हुआ लीडर होता है, जो विक्टोरियस लीडर या आर्मी होता है या नावीज में जो होते हैं, तो उनको वो गिफ्ट के लिए सोड गिफ्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सोड ये तलवार प्रेजेंट करते हैं। तो एक एडमिरल स्ले हुए तो उनको फिलेडेल्फिया के लोगों ने लड़ाई के बाद, एक जो अमेरिका की वार स्पेन के साथ था, उन्होंने एक सोड उनको गिफ्ट किया जीतने के बाद। और उस समय वो करीब करीब $3,500 का, उस समय का $3,500 का वो सोड था। और उसका जो ज्यादातर जो खर्चा हुआ था, उसकी जो म्यान है, जो स्कैबर्ड है, उसको डेकोरेट करने में, उसके अलग अलग तरह के जेम्स लगे थे, सोने के, हीरे के, डायमंड के, गोल्ड के, उसे लगे हुए थे। और ऊपर उन्होंने गोल्डन लेटर से उनका नाम लिखा था, एडमिरल स्ले करके नाम लिखा था। और स्टेट ऑफ लुइजियाना में, लुइजियाना के तरफ से उनको वो एक मिला था। जब उनको पूछा गया हाउ डू यू फील, तो उन्होंने कहा इट इज ए वेरी फाइन सोर्ड इनडीड, एंड ही सेड बट देयर इज वन थिंग अबाउट इट, आई वुड हैव प्रीफर्ड डिफरेंट। The inscription should be on the blade, not on the scabbard. And the scabbard may be taken from us, the sword never. एक सोल्जर को उसका नाम अगर आप सोड में लिखते हैं तो वो तो परमानेंट उसके लिए हो सकता है, क्योंकि जो मैन है जिसके अंदर तलवार रहता है वो उसके लिए यूजलेस है, वो डेकोरेटिव है। आप तलवार में धार नहीं देते हो, उसको शार्प नहीं करते हो, और उसकी जो कवर है, जो स्कैबर्ड है या जो म्यान है, आप उसमें ज्यादा पैसा उसमें खर्च करते हो, ज्यादा टाइम एनर्जी उसमें खर्च करते हो, तो लड़ाई के मैदान में ऐसा सोल्जर क्या करेगा, किस काम का होगा। हम सब इसी तरह म्यान पर ज्यादा खर्च करते हैं, स्कैबर्ड पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस फिजिकल चीजों पर, सेंसुअल चीजों पर, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। ये गोल्ड का अट्रैक्शन है, ये नेम का अट्रैक्शन है, ये फेम का अट्रैक्शन है, वो एंजॉयमेंट का अट्रैक्शन है, जो हमें मजबूर करता है टू बिलीव देयर इज नो लाइट, द ट्रूथ इज समथिंग डिफरेंट। वो हमें मजबूर करता है ट्रूथ को ना मानने के लिए, ट्रूथ को एक डिफरेंट वे में मानने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा के कंक्लूड करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना कि सत्य कैसे डे टू डे लाइफ में भी हमें हमारे अट्रैक्टिव चीजों के कारण छुप जाता है, हमारे वो पर्सनल ट्रूथ हो, वो फैमिली का ट्रूथ हो, वो हमारी सोसाइटी का ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कैसे हम एवरी डे वी कंप्रोमाइज विथ आवर ओन ट्रूथ बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सो मेनी गोल्डन थिंग्स। नेक्स्ट टाइम उसको कंक्लूड करेंगे, आप लोगों ने ध्यान से सुना।